हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तारा परी ने अपने चारों ओर जो सुरक्षा चक्र बनाया था, विक्रांत रंधावा उसे पार नहीं कर सका। उस सुरक्षा चक्र से विक्रांत रंधावा को आग निकलती हुई दिखाई दे रही थी। तारा परी को इस तरह अनुष्ठान में बैठा देखकर विक्रांत रंधावा हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तारा को ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस तरह का अनुष्ठान कर रही थी। विक्रांत रंधावा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि तारा अमन के पिताजी को ढूंढना चाहती थी और उसके लिए ये अनुष्ठान बहुत जरूरी था। यदि वो ये 11 घंटे का अनुष्ठान पूरा कर लेती तो उसे अमन के पिताजी के स्थान का पता चल जाता। विक्रांत रंधावा ने जैसे ही तारा के आसपास के गोल घेरे को देखा, वो समझ गया कि तारा एक सुरक्षा चक्र के बीच में बैठकर अनुष्ठान कर रही थी। इसलिए विक्रांत रंधावा ने उस रक्षा चक्र को भेदने की कोशिश ही नहीं की। वो तो सिर्फ तारा को देखना चाहता था, तारा की खुशबू को अपने जिस्म में, अपनी रूह में उतरना चाहता था। इसलिए वो अनुष्ठान करती हुई तारा के ठीक सामने जा बैठा। वो सोचने लगा कि ये तो और भी अच्छी बात है, तारा अनुष्ठान में रहेगी और उसे उसके वहाँ होने का एहसास ही नहीं होगा। वो जब तक चाहे कितनी ही देर तक उसे वहाँ बैठे हुए देख सकता था, और तारा तो उसकी ओर देख ही नहीं सकती थी। इसलिए वो अदृश्य होकर वहाँ बैठ गया था और तारा की ओर देखने लगा। कभी उसकी नज़रें तारा के खूबसूरत जिस्म पर जाती तो कभी उसके शरीर के उभरे हुए अंगों पर, कभी उसकी नज़रें तारा के खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर जाती और फिर अंत में उसकी नज़रें सिर्फ तारा के खूबसूरत होंठों पर आकर ठहर जाती थीं। विक्रांत रंधावा हवस भरी नज़रों से तारा के जिस्म के एक एक अंग, एक एक हिस्से को देख रहा था। ऐसा लग रहा था विक्रांत रंधावा को मानो तारा ने कोई कपड़े नहीं पहने हुए हों, वो बिल्कुल नग्न बैठी हुई हो और वो इस तरह से कल्पना करके उसे देख रहा था। हालांकि तारा ने एक काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था जिसमें वो किसी जादू टोने वाली से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उन काले कपड़ों में तारा परी की उज्ज्वल गोरी रंगत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए बार बार विक्रांत रंधावा तारा को देख रहा था और उसकी खुशबू को अपने जिस्म में बसा रहा था। पूरी रात तारा का अनुष्ठान चलता रहा और विक्रांत रंधावा पूरी रात इस तरह से उसके ठीक सामने बैठा रहा। वहीं करिश्मा जी अपने कमरे में चली गई थीं। तारा परी ने करिश्मा जी को कमरे में जाने से पहले ही कहा था, मॉम, मैं चाहती हूँ कि मुझे सुबह तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मैं आराम करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज कुछ ज्यादा ही शहर की सैर कर ली है तो मेरे शरीर में बहुत थकान महसूस हो रही है। तो करिश्मा जी ने सभी नौकरों को तारा के सामने ही सख्त हिदायत दे दी थी कि उसके कमरे के आसपास कोई भी नहीं भटकेगा, तो इसीलिए करिश्मा जी को भी यही लग रहा था कि तारा अपने कमरे में आराम कर रही है। करिश्मा जी अच्छी तरह से जानती थीं कि अगर कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि करिश्मा जी एक जिन औरत थीं तो उन्हें इतना ज्यादा पता नहीं था, लेकिन करिश्मा जी की नज़रों में तारा परी एक मामूली इंसान थी, इसलिए उन्हें तारा की सबसे ज्यादा फिक्र थी। रह रहकर उन्हें यही बात सता रही थी कि न जाने एक मामूली इंसान होकर कैसे वो इतनी शक्तिशाली बच्चों को जन्म दे पाएगी। खैर, करिश्मा जी ने सोच लिया कि तारा तो अपने कमरे में है और विक्रांत रंधावा भी दवाइयां लेकर सोया हुआ है, तो उन्हें भी अब डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तो क्यों ना वो भी हमेशा की तरह अपना अनुष्ठान शुरू कर दे। कुछ सोचकर करिश्मा जी भी अपने कपड़े बदलकर अपने ही कमरे में अनुष्ठान करने के लिए बैठ गई थीं। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका के साथ अमन के बगीचे के बाहर खड़ा हुआ था। तब मल्लिका ने अमित से कहा था, हम लोग यहाँ तो आ गए हैं लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि इस बगीचे का मालिक कौन है और इस बगीचे का जिन महाराज यहीं के बरगद के पेड़ पर समाधि लिए हुए हैं। ये बात काली शक्ति का हर बच्चा बच्चा जानता था, क्योंकि जब उन लोगों का युद्ध हुआ था उसी युद्ध में जिन महाराज समाधि पर बैठ गए थे और काली शक्तियों के गुरु हमेशा के लिए काली पहाड़ी पर कैद हो गए थे। मल्लिका की बात सुनकर अमित ने कहा था, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मुझे अपनी आंखों के सामने केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो तुम कुछ भी करो, मुझे जल्द से जल्द उसे सरोवर में नहला दो, क्योंकि जब तक मैं उसे सरोवर में स्नान नहीं करूंगा मेरे अंदर की ऊर्जा ताकत वापस नहीं आएगी। काली शक्तियों के मालिक अमित की हालत वाकई बहुत खराब थी। मल्लिका ये बात अच्छी तरह से देख और जान चुकी थी। मल्लिका का मन कर रहा था कि वो उसे मरने के लिए वहीं बाहर छोड़ दे, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि भले ही ये काली शक्तियों का मालिक अमित कितना ही बेवकूफ क्यों न हो, लेकिन वो अभी उसके काफी काम आने वाला था, क्योंकि तिलस्मी पत्थर यही हासिल कर सकता था, क्योंकि काली शक्तियों के गुरु ने इसे कुछ ऐसी शक्तियों से नवाजा था जो किसी भी शक्ति का सामना कर सकती थीं। बस केवल उसे तिलस्मी पत्थर का इंतजार था। जैसे ही तिलस्मी पत्थर काली शक्तियों के मालिक अमित के हाथ लग जाता, वो अमन से आमने सामने की लड़ाई लड़ने में एक मिनट की भी देरी नहीं लगाता। मल्लिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी और वो ये भी जानती थी कि चाहे इसमें काली शक्तियों का मालिक अमित जीते या विक्रांत रंधावा, उसे तो सिर्फ अमन चाहिए था। मल्लिका को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अमन उसे काली शक्तियों का मालिक अमित देगा या विक्रांत रंधावा। विक्रांत रंधावा के मकसद के बारे में तो मल्लिका को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। वो तो सिर्फ इस बात के इंतजार में थी कि कब विक्रांत रंधावा उसे कोई काम करने के लिए देगा और कब वो विक्रांत के सामने अमन के लिए अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं मल्लिका को लगता था कि विक्रांत रंधावा ही एक ऐसा इंसान है जो अमन को लेकर उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। ज्यादा न सोचते हुए मल्लिका ने अपने काले साए का प्रयोग करके अमित को भी गायब कर दिया और धीरे धीरे जैसे ही उसने अपना पहला कदम बगीचे के अंदर रखा, बगीचे में एक तरह की कंपन शुरू हो गई। वहीं जिन महाराज को अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि कोई काली शक्ति बगीचे में आई है, लेकिन क्योंकि उनके हाथ पैर बंधे हुए थे तो वो अभी कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि वो अपने मंत्रों के उच्चारण से उन दोनों को कैद भी कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले वो ये जानना चाहते थे कि बगीचे में आने वाला आखिर कौन था। मल्लिका जल्दी ही अमित को सरोवर के ठीक सामने ले गई। जैसे ही अमित ने सरोवर देखा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक तो वो अर्ध बेहोशी की हालत में था और सरोवर में किस तरह से स्नान करना है इस बारे में काली शक्ति के गुरु ने उसे कुछ नहीं बताया था। तब मल्लिका ने अमित से कहा था, आपको सरोवर में पूर्व दिशा की ओर 3 बार डुबकी लगानी होगी। जैसे ही आप 3 बार डुबकी लगाएंगे, धीरे धीरे आपके अंदर की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। मल्लिका की बात सुनकर अमित ने हल्का सा सिर हिलाया और जल्दी ही वो धीरे धीरे मल्लिका की सहायता से सरोवर के अंदर चला गया। जैसे ही काली शक्तियों के मालिक ने तालाब के अंदर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 3 बार डुबकी लगाई, अचानक पूरे बगीचे में जोरदार हवा चलने लगी। इसका मतलब साफ था कि काली शक्तियों के मालिक की शक्तियाँ उसके पास वापस आने लगी थीं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो डुबकी पूरी कर रहा था, उसके अंदर उसकी पूरी शक्तियाँ आ गई थीं और अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद जैसे ही वो सरोवर से बाहर निकला, उसने चारों ओर बगीचे को देखा और मल्लिका से बोला, वाकई ये बगीचा बहुत ही खूबसूरत है।
जिस दिन अमन से मैं जीत जाऊंगा, इस बगीचे को भी हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, और इसमें जो वृद्ध महाराज जिन्न महाराज बैठा हुआ है, उसे उठाकर इस बगीचे से बाहर फेंक दूंगा। अमित ने जिन्न महाराज के लिए बड़ी ही गंदी भाषा का प्रयोग किया था। जिन्न महाराज अमन के दादाजी उस वक्त अमित और मल्लिका को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन अमित और मल्लिका की एक एक बात को वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे और वो इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा चुके थे कि काली शक्तियों का मालिक जो भी है, ये जरूर अमन के इर्द गिर्द ही रहता है, वरना इस तरह से वो नहीं बोल सकता था, क्योंकि इतनी गहरी बात केवल कुछ ही काली शक्तियों के मालिक और कुछ ही लोगों को पता थी। तभी जिन्न महाराज ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया ताकि वो मल्लिका और अमित को कैद कर सकें और वे उस बगीचे को छोड़ कर ना जा सकें। और जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रों का प्रयोग करके मंत्र फूंका, अमित और मल्लिका तालाब के आसपास ही पत्थर के जैसे जम गए। मल्लिका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जिन्न महाराज ने उन्हें एकदम से पत्थर के जैसा जमा दिया था। उन्होंने तय किया था कि 7 दिन बाद, जब अमन की तपस्या पूरी होगी और जब अमन उनके हाथ पैर छुड़ा देगा, तब वो इन दोनों की शक्ल देखेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर ये कौन है, और फिर खुद अमन इनको सबक सिखाएगा। ये सोचकर उन्होंने उन दोनों को पत्थर का बना दिया था। मल्लिका और अमित का पूरा जिस्म एकदम बल्फ के जैसा जम गया था, लेकिन उनका दिमाग अच्छी तरह से काम कर रहा था। मल्लिका और अमित दोनों एक दूसरे से मन ही मन में बातें करने लगे। अमित ने मल्लिका से कहा था, इस बूढ़े ने तो हमें पत्थर का बना दिया है, अब हम क्या करें? अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। काली शक्तियों के मालिक अमित की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और साथ ही साथ उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा था। लेकिन तभी